ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय। नमस्ते पंकजांग्रे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंग्रते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं।
हरे कृष्ण। इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं छठवें स्कंद से पंचम अध्याय और श्लोक है 35 और इस अध्याय का नाम है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। चक्रोध नारदाय असो पुत्रशोक विमूर्छिता देविषिम् उपलभ्य आह रोषात् विस्फुरिता अधरा। चक्रोध नारदायासो पुत्रशोको विमूर्छिता देवर्षिम् उपलभ्याह रोषाद्विषपुरिताधर। चक्रोध नारदायासो पुत्रशोको विमूर्छिता देवर्षिम् उपलभ्याह रोषात् विस्फुरिताधर। चक्रोध नारदायासो पुत्रशोक विमूर्छिता देवर्षिम् उपलभ्याह रोषात् विस्फुरिता अधर। पढ़िए। માતાજી બોલો. માતાજી શબ્દાર્થ, ચક્રોધ અત્યંત ક્રુદ્ધ હુઆ, નારદાય નારદ મુનિ પર, અસો વહ અર્થાત દક્ષ, પુત્ર શોક અપને પુત્રો કી ક્ષતિ કે શોક કે કારણ, વિમૂર્છિતઃ પ્રાય અચેત, દેવશિમ દેવર્ષિ નારદ કો ઉપલભ્ય દેખ કર, આહ કહા રોષાત મહાન ક્રોધ વશ, વિસ્ફુરિત કાપતે હુએ અધર હોટો વાલા. અનુવાદ ઓર તાત્પર્ય શિલ પ્રભુપાદ દ્વારા. શિલ પ્રભુપાદ કી અનુવાદ ઇસ પ્રકાર હૈ, જબ દક્ષ ને સુના કે સાવલાશ્વ ને ભી ભક્તિ મેં સંલગ્ન હોને કે લીએ ઇસ જગત કો છોડ દિયા હૈ, તો વે નારદ પર ક્રુદ્ધ હુએ ઓર શોક કે કારણ વે અચેત પ્રાય હો ગયે. જબ દક્ષ નારદ સે મિલે તો ક્રોધ સે દક્ષ કે હોઠ કાંપને લગે ઓર વે ઇસ પ્રકાર બોલે, દોહરાઈએ મેરે પીછે. જબ દક્ષ ને સુના કે સાવલાશ્વ ને ભી ભક્તિ મેં સંલગ્ન હોને કે લીએ ઇસ જગત કો છોડ દિયા હૈ, તો વે નારદ પર ક્રુદ્ધ હુએ ઓર શોક કે કારણ વે અચેત પ્રાય હો ગયે. જબ દક્ષ નારદ સે મિલે તો ક્રોધ સે દક્ષ કે હોઠ કાંપને લગે ઓર વે ઇસ પ્રકાર બોલે. તાત્પર્ય, શ્રી વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર કી ટીકા હૈ કે નારદ મુનિ ને પ્રિયવ્રત તથા ઉત્તાનપાત સે લેકર સ્વયંભુ મનુ એ સારે પરિવાર કા ઉદ્ધાર કિયા થા. ઉન્હોને ઉત્તાનપાત કે પુત્ર ધ્રુવ કા ઉદ્ધાર કિયા થા ઓર પ્રાચીન વરિષ્ઠ તક કા ઉદ્ધાર કિયા જો સકામ કર્મો મેં લગા હુઆ થા. ફિર ભી વે પ્રજાપતિ દક્ષ કા ઉદ્ધાર નહીં કર પાએ. પ્રજાપતિ દક્ષ ને નારદ કો અપને સમક્ષ દેખા, ક્યોંકિ નારદ સ્વયં ઉસકા ઉદ્ધાર કરને આયે થે. નારદ મુનિ ને પ્રજાપતિ દક્ષ કે પાસ ઉનકી શોકાકુલ દશા મેં મિલને કા અવસર નિકાલા, ક્યોંકિ શોક વિફલ દશા ભક્તિ યોગ કો સમજાને કે લીએ ઉપયુક્ત સમય હોતા હૈ. જૈસા કી ભગવદ્ ગીતા મેં કહા ગયા હૈ, ચાર પ્રકાર કે લોગ આર્ત અર્થાર્થ જિજ્ઞાસુ તથા જ્ઞાની ભક્તિ કો સમજને કી કોશિશ કરતે હૈ. પ્રજાપતિ અપને પુત્રો કી ક્ષતિ હોને કે કારણ અત્યંત કષ્ટ મેં થા, અત નારદ ને ભૌતિક બંધન સે મુક્તિ કે વિષય મેં ઉસે ઉપદેશ દેને કા અવસર ઢૂંઢ નિકાલા. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશયાકયા ચક્ષુરોન્મીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિતં યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાંતિકમ્. વંદેહં શ્રીગુરુ શ્રીયુતપદકમલં શ્રીગુરૂન વૈષ્ણવાંચ શ્રીરૂપાં સાગ્રજાતં સહગના રઘુનાથાન્વિતં તં સજીવં સાદ્વૈતં સાવધૂતં પરિજનસહિતં કૃષ્ણચૈતન્યદેવં શ્રીરાધા કૃષ્ણ પાદા સહગના લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાં ચ. નમઃ વિષ્ણુ પાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામીતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી
पाचात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरत्विषे नमः। आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधू वर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमार्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रापि न परा। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौतिकं करतले वेणुकरे कंगनम सर्वांगे हरिचंदने सुललिते कंठे च मुक्तावली गोप्यश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी वरिष्ठ वैष्णव अधिकारी वर्गों और वैष्णव से कृपा याचना आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए इस अमल पुराण पर मैं मल से भरा व्यक्ति बोलने का प्रयास करूंगा। जो भी कुछ त्रुटि हो आप सहर्ष क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। तो जो अध्याय है काफी रोमांचक है। नारद मुनि को प्रजापति दक्ष द्वारा शाप इस अध्याय में मिला। तो इस अध्याय को हम जानते आ रहे कि दक्ष प्रतापति को जब ब्रह्मा जी के द्वारा आज्ञा मिले कि आप सृष्टि की उत्पत्ति करिए और सृष्टि का विस्तार, तो दक्ष इस शब्द से अर्थ ही निकलता है जो एकदम एक्सपर्ट, किसमें? संतान उत्पत्ति करने, भौतिक विस्तार करने के लिए। तो उसी प्रकार उनके जो सामने भी है वो भी दक्ष है, लेकिन किसमें? प्रचार करने में। केवल नारद मुनि ब्रह्मचारी को ही नहीं प्रचार करते, सबको प्रचार करते। हम देखेंगे अभी एक एक सीक्वेंस कि नारद मुनि अपने जीवन में किस किस को प्रचार किए, कैसे कैसे व्यक्तियों को प्रचार किए। तो दोनों दक्ष है अपने अपने क्षेत्र में। तो इस दोनों का सामना इस अध्याय में हुआ है। तो सर्वप्रथम नारद मुनि एक भगवान के अत्यंत प्रिय और सबसे महान प्रचारक है, और भगवान को वही व्यक्ति प्रिय है। भगवान ने गीता में इसका स्पष्ट उल्लेख 18 अध्याय के 68 और 69 श्लोकों में किया। न च तस्मात् मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रियकृत्तमा। भगवान ने पहले ही जाहिर कर दिया मुझे वही व्यक्ति प्रिय है जो मेरे इस ज्ञान का, मेरे इस नाम का, भक्ति का प्रचार करता है। उससे अधिक प्रिय कोई था नहीं, ना है, ना होगा। तीनों कालों में ये घोषणा उन्होंने कर दी। तो नारद मुनि हमारी इस परंपरा के भी ब्रह्मा जी के बाद सेकंड आचार्य है हमारी ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के, तो काफी नारद मुनि का व्यक्तित्व सभी जानते हैं। सारे त्रिभुवनों में नारद मुनि की इस महिमा का, भक्ति का और उनके गुणों का बखान सर्वत्र होता है। तो हमको नारद मुनि यहां पर दक्ष के प्रजापति के जो 10,000 पुत्र, उन्हें पहले नारायण सरस जो गुजरात में जहां सिंधु नदी समुद्र से मिलती है उस स्थान पर ये सरोवर है, वहां पर उन्होंने आगे, क्योंकि दक्ष का काम था प्रजा की उत्पत्ति करके प्रजा बढ़ाना आगे, है ना, अपनी लोक संख्या को वृद्धित करना, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को तपस्या करने भेजा। क्योंकि कोई भी चीज में यदि हमें महारत या यश हासिल करना है तो उससे पहले कठोर श्रम, जिसे तपस्या कहा जाता है, जैसे आज हम कुछ बिजनेस खड़ा करना चाहे तो उससे पहले हमें बहुत कठोर श्रम करना होता है, तब जाके हमें किसी भी व्यवसाय में, किसी भी क्षेत्र में हमें फल मिलता है। तो सृष्टि से आरंभ से ही यह तपस्या शुरू हुई है। पहला जो ब्रह्मा जी को भी इस सृष्टि की विकास करना था या इसे विस्तार करना था, तो उन्हें भी पहले तपस्या, तप 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 इन शब्दों द्वारा ही संबोधित किया गया भगवान के द्वारा। तो ये सृष्टि तपस्या कोई नई बात नहीं है, हर किसी को भौतिक जगत में रहते हुए भी तपस्या करनी पड़ती है, हा? एक प्रकार की तपस्या है। प्रभुपाद बोलते इतना 500-500 मैल गाड़ी से स्पीड से जाना, जैसे अमेरिका में तो प्रभुपाद बोलते कि चूहे की दौड़ भाग रहे इधर से उधर केवल अपना दिन रोजी रोटी के लिए, हा? अपने भोजन के लिए दिन रात भाग रहे गधे की तरह, तो ये भी एक तपस्या ही है। हम लोकल ट्रेन में देखते हैं कई सारे लोग इतने जैसे भेड़ बकरियां भरते हैं ऐसे भर देते घुस घुस के, तो वो भी एक प्रकार की तपस्या है। इतना सफोकेशन वातावरण में वहां पर खड़े रहना, तो एक तपस्या मतलब कष्ट, तपस्या का अर्थ क्या होता है, कष्ट। लेकिन आध्यात्मिक में तपस्या स्वयं की इच्छा से ली जाती है और भौतिक जगत में जबरदस्ती स्वीकार करनी पड़ती न चाहते हुए भी। ये अंतर है भौतिक की तपस्या का और आध्यात्मिक तपस्या का। तो यहां पर नारद मुनि ने जब देखा इन, पहले हरियश्व को देखा जो 10,000, हरियश्व शब्द का अर्थ देवकीनंदन को बता दे कि जिनके विचार जिनका स्वभाव एक जैसा है, 10 के 10,000 एक ही विचार है, भले आत्मा 10,000 है लेकिन सबकी भावनाएं विचार आचार सब एक ही है, तो मतलब प्रीचिंग करने के लिए एकदम ईजी है। नहीं तो हम प्रीचिंग करते लोगों को, कोई कौन कौन से स्तर के मेंटालिटी के लोग आते हैं तो हमें डिफिकल्ट हो जाता है उनको प्रीचिंग करने के लिए, किस तरह से प्रीचिंग किया जाए, बड़ा प्रचारक का कसौटी होता है। लेकिन नारद मुनि ने देखा एक ही स्वभाव के सब है, इसलिए उनका हरवेश नाम दिया गया और उनको प्रीचिंग करने के लिए अलग से बैठकर इस कोने में एक घंटा इसको, बाद में 2 घंटा इसको लेकर नहीं बैठना पड़ा, एक ही साथ सबको एक ही उपदेश दिया और सब मान गए। उसी प्रकार जब दक्ष को पता चला तो दक्ष ने ध्यान नहीं दिया, फिर दोबारा 1,000 पुत्रों की उत्पत्ति की, फिर उनको भी सावलाश्व नाम दिया गया और वो भी उसी रास्ते पर। नारद मुनि ने कहा कि आपके बड़े भ्राता जिस पदचिन्ह पर चले आपको भी उसी पदचिन्ह पर चलना चाहिए, तब ये। और उन्हें देखा कि इतनी कठोर तपस्या ये केवल साधारण भौतिक चीज हासिल करने के लिए कर रहे, तो नारद मुनि में दया प्रकट हुई, तो कि क्यों ना इनको जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य उसके लिए प्रेरित किया जाए, नारायण की भक्ति। तो उन्होंने उनको प्रेरित किया। जब नारद मुनि जब भी कहीं जाते देखते तो कोई यदि गलत कार्य में लगा है या जीवन का विनाश कर रहा है तो उसे बचाने के लिए नारद मुनि, क्योंकि दया। तो आज हम देखेंगे कि प्रचार, प्रभुपाद एक ग्रंथ लिखे है प्रचार इसार, उसमें प्रचार करने की विधि पर बल दिया है कि किस तरह प्रचार होना चाहिए, और नारद मुनि एक्सपर्ट प्रीचर है ना। तो सर्वप्रथम क्वालिटी जो है प्रचारक की वह है प्रचार कार्य, वो है दया, कंपैशन। भक्ति सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने एक किताब लिखा है उसका नाम है कंपैशन, दया। जिस व्यक्ति के हृदय में दया नहीं है वो व्यक्ति कभी भी प्रचार नहीं कर सकता है। प्रचार का पहला ही गुण है प्रचारक का कि उसके अंदर दया भावना होनी चाहिए, क्योंकि दया से उस व्यक्ति की कल्याण का सोच सकता है। यदि दया ही नहीं है तो व्यक्ति उसके कल्याण के बारे में, उसको दिखेगा नहीं कि ये वास्तव में दुख में गिरा है या कष्ट झेल रहा है। हम सामान्य दृष्टि से देखते, लोग देखते तो एंजॉय कर रहे हैं, हाँ खाओ पियो इसका मस्त मजे में सब कुछ है, लोग बोल देखेंगे कि अरे ये तो सब कष्ट में नहीं है, आनंद भोग रहे, सब मजे में हंस रहे, खा रहे, घूम रहे, तो व्यक्ति देखेगा कि इसमें दुखी नहीं है तो वो क्या प्रचार करेगा। तो प्रचारक के लिए व्यक्ति के पास पहले दया दृष्टि होनी चाहिए, तब वो देखेंगे अरे क्योंकि बाह्य दृष्टि से नहीं दिखेगा, उसे आंतरिक दृष्टि होनी चाहिए, तभी वो प्रचार कर सकता है। तो यहां पर प्रभुपाद कुछ स्टेटमेंट देते हैं दया पर आधार पर, प्रचारक का दया भाव। तो कहते हैं जो अपनी पहचान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी के रूप में करता है उसे श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह अनुभव करना चाहिए, जिन्होंने कहा यह सबर कोण मते ये अबे निस्तार, इतने सारे यवनों का उद्धार कैसे होगा, है ना। तो सबसे पतित यदि है तो वह है यवन, यवन का अर्थ है मुस्लिम्स, यवन, तो ये लोग सबसे पतित है, ना? तो इनका उद्धार कैसे आए, चैतन्य महाप्रभु को दया थी। आगे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु पतितात्मा का उद्धार करने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे क्योंकि उन सबकी पतित दशा से उन्हें महान दुख पहुंचता था। यह वो स्तर है जिस पर चैतन्य महाप्रभु का मिशन प्रसार किया जा सकता है। तो मतलब ऑलरेडी हरे कृष्ण आंदोलन जो मिशन है यह दया पर आधारित है, यदि दया नहीं है तो व्यक्ति इस आंदोलन में प्रीचिंग नहीं कर सकता है। और प्रभुपाद भी कहते हैं और हमारे स्वयं के महाराज भी ने कहा, जब मुझे प्रचार करने का आदेश दिया गया तो मुझे तो मालूम नहीं था प्रचार क्या होता है, तो मैं प्रचिंग करने लगा, जैसे जैसे कोई ट्रेनिंग नहीं कुछ नहीं, लेकिन जब प्रचिंग करते करते बहुत डिफिकल्टी आई तो मैंने गुमराज कहा कि बहुत तकलीफ है प्रचार करने में, स्वयं अपना भी स्थान डाउन होने की स्थिति रहती है, नए नए प्रचारों को एक्सपर्ट नहीं है, अनुभव नहीं है, तो उस प्रचार करते समय हमें ही बहुत सारी संकटों से जूझना पड़ता है, लगता है कि मैं कहीं ना फॉल डाउन ना हो जाऊं, यही भावना हमेशा सताती है। तो मैंने महाराज को कहा कि मैं प्रीचिंग नहीं करना चाहता, आप मुझे कुछ दूसरी अन्य सेवा दीजिए। तो उन्होंने कहा जब साधु बने हैं या गेरुआ वस्त्र पहने हैं तो तुम्हारा काम ही है कि ब्रह्मचारी हो तो कमर का एक ही काम है प्रचार करना, इसके अलावा ब्रह्मचारी का दूसरा काम नहीं है। तो प्रभुपाद ने मिशन शरणागत या जो समर्पित भक्त है जो भी ब्रह्मचारी बने उनका एक ही काम है, नारदवाणी कौन है, नारद मुनि ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी का काम ही है प्रीचिंग करना। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं जो जीवित है वही प्रचार कर सकता है, जो प्रचार नहीं करता वो व्यक्ति मरा हुआ है, क्या द डेथ डेथ पर्सन। तो प्रचार से हम भी स्वयं जीवित रहते हैं और दूसरों को भी जीवित करते हैं, है? जीवित मतलब शरीर से जिंदा रहना जिंदा नहीं होता है, हाँ वो तो केवल जो प्रचार नहीं करता, जो भक्त नहीं है वो जीते जी अपने देह को ढो रहा है, क्या जैसे मुर्दे को ढोते हैं मरने के बाद, वैसे व्यक्ति आत्मा इस जीते जी शरीर को केवल ढो रहा है, हाँ अपनी लाइफ के लिए। जो प्रचार नहीं करता या जो भक्त नहीं है, जो कृष्ण भावना में अपना मन नहीं लगाता या कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं है, ऐसे व्यक्ति जीते जी मुर्दे है, मुर्दे को श्रृंगार कर रहे रोज उठ के, ऐसा रहता है। तो इसलिए ब्रह्मचारी मीन्स प्रीचिंग, या प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि प्रचार ही सार है और ये आंदोलन ये मिशन उसी के लिए ही निर्माण किया गया है कि प्रीचिंग करें, नहीं तो इतने कम सालों में इतने विश्वव्याप्त ये आंदोलन हो पाया क्यों, प्रचार। बाकी की संस्था इतना प्रचार नहीं करती है, या भारत में कई सारे ब्राह्मण है वो अभी केवल मंदिरों के मठों में बैठकर धन कमाते हैं, प्रचार नहीं करते, ना बाकी मंदिरें जाइए वहां पर ना कथा होती है ना प्रवचन होता है ना कीर्तन होता है, हाँ केवल भगवान के नाम पर दर्शन मुकुट चढ़ा दिया पैसा लो, तो नहीं, प्रभुपाद के मंदिर प्रभुपाद ने बनाए केवल प्रीचिंग के लिए, इसका दूसरा पर्पज है नहीं। तो आगे कहते दया के इसमें ज्ञान तथा दया से प्रेरित होकर ही भक्त प्रचार करता है, तो दोनों होना चाहिए, बोलते ज्ञान और दया। जब भी शरीर के किसी अंग में रोग हो जाता है तो सारा शरीर दुखने वाले अंग की रखवाली करता है, इसी तरह समस्त बद्ध जीवों के लिए भक्त की दया द्वारा उसके तादात्म्य का प्रदर्शन होता है। भगवद गीता में कहा है पंडिता समदर्शिना, जो लोग विद्वान है वह हर एक बद्ध जीव को समभाव से देखते हैं, भक्तगण हर बद्ध जीव पर दयालु रहते हैं इसलिए अपारक्य बुद्धि कहलाते हैं। तो प्रचारक का दूसरा है क्वालिटी है समभाव, ये ना देखे ये गरीब है क्या काम में आएगा मुझे, धनी है ना चलो उसको प्रचार करते बहुत धन आएगा, नहीं केवल धन की अपेक्षा से किसी को प्रचार किया जाए ये नहीं चाहिए, हमें उस आत्मा की तरफ देखना है। इसलिए नारद मुनि सबसे ग्रेट प्रचार है, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। हम देखते हैं मृगारी कौन था, शिकारी। चैतन्य चैतन्य ये कथा आती है कि मृगारी एक शिकारी था, इतना पतित था कि तो शिकारी कम से कम मारकर छोड़ देता है, ये तो आधा मार के छोड़ता था। उसे आधा मारकर छोड़ने में मजा आता था, जब तड़पते थे जानवर तब उन्हें बहुत खुशी होती थी। हा? तो नारद मुनि ने देखा, अरे कम से कम तुम उसे मार तो दे, कम से कम उसकी तकलीफ से, उसे कष्टों से उसे छुटकारा मिल जाएगा, तो तुम उन्हें क्यों आधा मारा छोड़कर। नहीं, बोले मुझे बहुत आनंद आता है। तब उन्होंने उसे फिलॉसॉफी संग सिखाया कि आज जो तुम उसे मार रहे हो कल वो तुम्हें मारेंगे इसी तरह। क्योंकि साधु या प्रचारक या भक्त जो भी बोलता है वो रियलाइजेशन होता है कि दुख है संसार दुखालय, तभी तो प्रचारक बनता है। जब कोई अनुभव ही नहीं करेगा संसार दुखालय तो क्या प्रीचिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो नारद मुनि पूरी तरह साक्षात्कारी पुरुष, तो उन्होंने बताया कि कर्म का सिद्धांत है कि तुम्हें भी ऐसा मरना पड़ा। तो मुरुगारी जैसे इतने खूंखार शिकारी को भी उन्होंने परिवर्त कर दिया। और देखते नारद मुनि के वचनों का प्रभाव कि जब नारद मुनि कई सालों के बाद उस रास्ते से पुनः आते हैं तब उन्हें याद आता है, अरे यहां पर मैंने किसी एक को भक्त बनाया था, चलो देखते हैं भक्ति में कितनी प्रगति हुई है ना। गुरु का काम होता है बीच बीच में अपने शिष्य को टटोलना, देखना कि क्या प्रगति कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। जैसे हमारे आंदोलन में गुरुवर्ग है, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, परंतु उन्हें पता होता है अपना शिष्य कौन सा कहां पर है, यह अवगत होता है और हमेशा आकर उसकी जानकारी भी लेते रहते। तो नारद मुनि जब आए तब इस मृगारी को पता चला कि मेरे गुरुदेव आए, और जैसे ही उसने दूर से देखा तो तुरंत जहां बैठा था दौड़ के चल पड़ा। लेकिन दौड़ कैसे रहा था, एक पैर इधर एक पैर उधर, एक पैर इधर एक पैर उधर। तो नारद मुनि को आश्चर्य हुआ, ये ऐसा डांस करते हुए क्यों भाग रहा है, क्या कुछ लग रहा है क्या इसके पैरों में। जब आके सीधा दंडवत मारता है और फिर नारद मुनि उससे पूछते हैं कि नारद मुनि में देखा कि ऐसा इस क्या कारण है, तो बोलते हैं मैं जब रास्ते से चल रहा था तो कई सारी चींटियां रास्ते में थी, और मैंने चींटियों को देखा तो मुझे लगा कहीं इनके ऊपर पैर देके मर ना जाए, इसलिए मैं उनको बचाते हुए आ रहा था। तो नारद मुनि मन में कहते हैं हाँ मेरा प्रीचिंग काम कर गया, जो शिकारी बड़े बड़े जानवरों को आधे मार के छोड़ता था आज वो चींटी को मारने के लिए डर रहा है, चींटी को बचा रहा है, तो कितनी दया है। तो बोलते हैं जो हमारे अंदर गुण है वो दूसरे के अंदर यदि हम प्रीचिंग करते हैं तो उन्हें जाते हैं। तो प्रचारक का पहला गुण है दया, यदि हम दया नहीं करें तो उस मृगारी जैसे खूंखार शिकारी के अंदर वो दया भावना कहां से आती थी। तो यह एक्सपर्ट विचार नारद मुनि, तो उन्होंने यहां पर समभाव दिखाया, यहां पर यह नहीं दिखाया क्या है मैंने तो उसको नरक में सड़ेगा, ये भावना ही नहीं लाई मन में। मन में क्या भावना लाई, इसका उद्धार कैसे होगा, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने इस यवनों का उद्धार कैसे होगा। तो ये तो दया और समभाव, उसी प्रकार नारद मुनि यही नहीं कि राजा है तो राजा की अवज्ञा करूंगा या राजा को उपदेश दूंगा तो मुझे दंड देगा, ये भी डर नहीं है। तीसरी क्वालिटी प्रचारक की निर्भयता, क्या हमेशा निर्भय होता है क्योंकि उसे विश्वास होता है, रक्षस्थिति विश्वास गोतृप्ते वर्णम यथा, उसे विश्वास होता है कि मेरी रक्षा कृष्ण करेंगे। ये विश्वास प्रचार होना चाहिए, यदि नहीं है तो दूसरों को कृष्ण क्या दे सकता है। भक्ति देना मतलब क्या, नारद जो नारायण को देता है वो नारद है। तो जिस व्यक्ति को स्वयं भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, स्वयं उसे ये ज्ञात नहीं है कि मेरी रक्षा भगवान करने वाले, तो दूसरों को कृष्ण दे सकता नहीं और दूसरों को रक्षा का वचन दे ही नहीं सकता है। जिस प्रकार मुगरणी कहा कि मेरा क्या होगा, ये तो मेरा खानदानी बिजनेस था जिसे मेरा रोजी रोटी चलता था, अभी क्या होगा, उसे डर पैदा होगा कि मेरा जीवन चलेगा कैसे। नारद मुनि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पूरे जीवन भर की खाने पीने की व्यवस्था कर देता हूं, बस मैंने जो बोला वो करो, लो अपनी कमान तीर तोड़ डालो, पहले अविश्वास था इसको तोड़ दूंगा तो मेरी रोजी रोटी। तो सर्वप्रथम निर्भय होना चाहिए, और निर्भयता वही दे सकता है जिसके अंदर निर्भयता है, और जो निर्भय नहीं है वो दुर्भयता नहीं दे सकता है, जिसके अंदर कृष्ण नहीं है वो कृष्ण नहीं दे सकता है। इसलिए साधो हृदय मह्यम मह्यम साधो हृदय, जिसके हृदय में साधु के हृदय में भगवान बोलते मैं बैठता हूं और मेरे हृदय में साधु होता है। तो नारद मुनि सबसे ग्रेट साधु है, तो उनके अंदर कृष्ण है इसलिए नारद नारायण है, इसलिए दूसरों को नारायण, ऐसे पतितों को भी नारायण दे रहे जिनके प्रभाव से जिनके प्रीचिंग से इतना घिनौना हत्या करने वाला व्यक्ति चींटी को मारने के लिए डर रहा है। तो यह है दया निर्भयता। तो नारद मुनि निर्भय कभी नहीं डरते। इस प्रकार आप देखते हिरण्यकश्यपु के सामने भी नारद रूपी उसे नारद मुनि ऐसे व्यक्ति जिनको त्रिलोकों में कोई भी किसी से भी डर नहीं है और खुले कहीं पर भी जा सकते हैं, उन्हें कोई बंधन नहीं है। जैसे हिरण्यकश्यपु उनके भाई को विष्णु ने मारा तो नारद मुनि उनके दरबार में उपस्थित हुए लेकिन उन्हें डर नहीं था कि ये मुझे भी, तो भले ही भगवान के प्रति असुर लोग द्वेष करें लेकिन नारद मुनि के प्रति कोई द्वेष नहीं करता है क्योंकि सबको मालूम है नारद मुनि सबका कल्याण करते रहते हैं। वही असुर भगवान के प्रति, नारद मुनि के जो स्वामी है उनके प्रति द्वेष और ईर्ष्या और उन्हें मारने पर तुले है ना, लेकिन वही उनका भक्त महान नारद मुनि, तो इसलिए बोलते कि भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्त होते हैं, है ना। तो भक्तों से कोई डर नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद पूरे विश्व में भ्रमण किए, प्रभुपाद से कोई डरा नहीं, ना प्रभुपाद किसी से डरे। बड़े बड़े साइंटिस्टों के सामने उनके ही प्रताड़ना, उनको ही गाली देना, रास्कल कहना, उसके लिए भी नहीं डरे। तो क्योंकि प्रचारक को अपने आप पर जितना विश्वास नहीं होता भगवान के ऊपर उतना विश्वास होता है कि नहीं मेरी रक्षा कृष्ण करेंगे, निर्भय होता है। भक्ति का ही तत्व है, जिसके बाद भक्ति है वह अभय। पहला ही क्वालिटी जो भक्त बन जाता है वह अभय बन जाता है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये पहला भय निकल जाता है ना, क्योंकि भक्ति की शक्ति इतनी है और निर्भय बन जाता है। और आगे कहते हैं तो कई ऐसे सारे प्रचार जिनको नारद मुनि ने, क्यों नारद मुनि ऐसे नहीं केवल व्यक्ति को बाहरी व्यक्ति को प्रचार करते और वही भक्त बनाते। प्रहलाद महाराज का उदाहरण, वो तो गर्भ में थे, गर्भ में भी प्रीचिंग किया। अरे कितने एक्सपर्ट प्रचारक है कि जरूरी नहीं उनको जीवात्मा बाहर होना चाहिए, अंदर भी है तो ठीक है रहने दो, वही में तुम्हें प्रीचिंग करता हूं है। तो प्रहलाद महाराज को गर्भ के अंदर भी नारद मुनि ने प्रीचिंग किया, प्रचार किया और भक्त बना दिया। 5 साल का बालक कितना निर्भय हो गया, जिसके भय से तीनों लोग कांपते थे, खाली भ्रुकुटी ऊंची करो तो सारे देवता थरथर करते थे, उनके चरणों में आके अपनी हाजिरी लगाते थे प्रणाम, और जब चाहे जहां चाहे जो भी चाहे कर सकते थे देवताओं के द्वारा। बारिश के समय ठंडी गिरा सकते थे, ठंडी के समय बारिश गिरा सकते थे, ऐसी इस अवस्था में देवताओं की स्थिति थी। वहां पर उनका ही 5 साल का बालक निर्भयता के साथ कहता है, जब उनके पिता उनको पूछते हैं कि कहां से तुम्हारे इतना बल आया, कितनी शक्ति आई, तुम मुझसे भी नहीं डर रहे हो, त्रिलोकी के देवता मेरे से डरते हैं कांपते हैं और तुम नहीं डर रहे हो, कहां से आया तुम्हें ये निर्भयता, ये कहां से आया तुम इतना बल। उन्होंने बोला, आप में जो बल जहां से आ रहा है उस वही मुझ में बल आ रहा है नारायण से, विष्णु से। तो ये भक्ति की शक्ति है। क्या नहीं किया गया प्रहलाद महाराज के साथ, हर तरीके, लेकिन प्रहलाद महाराज नहीं घबरे, नहीं डरे, हमेशा निर्भय रहे। ध्रुव महाराज 5 साल का बालक, उसे भी उन्होंने प्रेरित किया कि जाओ घर हा? लेकिन जो नारद मुनि से संपर्क में आ जाता है वो अपने आप, बोलते ना कि संसर्गजन्य रोग होता है ना, साथ में रहने से अपने में हो जाता है, तो उसी प्रकार नारद मुनि के संपर्क में जो भी आएगा वो भी निर्भय तुरंत बन जाता है ना। दूसरा क्वालिटी है प्रचारक करने की विधि, सॉरी प्रचार के बारे में जाना, प्रचार की विधि। तो प्रचार किस तरह किया जाए, ये प्रभुपाद उस स्टेटमेंट में देते हैं। साधु के उपदेश, भक्त संसार भर में भ्रमण करके द्वार द्वार जाकर उपदेश देता है कि कृष्ण भावना भावित बनो, कृष्ण भक्त बनो, अपनी पार्श्विक कृत्यों को पूरा करने में अपना जीवन नष्ट न करो, यह मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के लिए, यही साधु का उपदेश है। साधु का उपदेश आगे कहते हैं कि साधु ने तीन प्रचारों को तीन बातें एकदम ठोस और परफेक्ट बोलनी चाहिए, वो है उस श्लोक कोड कर दे प्रभात, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रोतम सर्वभूतानाम ज्ञातनाम शांति उच्चति। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो परमेश्वर संबंधी ज्ञान के इन तीन सूत्रों को समझे कि वही परम भोक्ता है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी है तथा सबों से सर्वश्रेष्ठ सूर्योदय तथा सका है। प्रचारों को इन सत्यों को स्वयं समझना चाहिए और हर एक को इनका उपदेश करना चाहिए, तब सारे विश्व में शांति होगी, तब हो जाए। इन तीन सूत्रों को हमेशा बैठो बिना डरे झिझकते बिल्कुल सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इस लोग प्रभुपाद कोड करते हैं, चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई स्पष्ट सलाह के अनुसरण करते प्रचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु क्या, जारे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु या तार यही देश। तो भारतवासियों का हर एक का कर्तव्य है कि महाप्रभु ने कहा कि आपका कर्तव्य है कि आपकी ड्यूटी है कि प्रचार करो, जिसको भी देखो कृष्ण उपदेश को, तभी होती है। क्योंकि हमें पहले से ही आशीर्वाद मिला हुआ है भारतीय लोगों को महाप्रभु के द्वारा, प्रचार करो, इसीलिए जो भी प्रीचिंग करे वो सक्सेस होगा, कोई क्या नहीं। महाप्रभु बोलते मैं प्रोटेक्शन देता हूं। आगे कहते हैं, प्रचारक का कर्तव्य कि अपराधियों को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित करें। चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देते हैं कि प्रचारक जिन लोगों से मिलते हैं वे अधिकांशतः अपराधी अतः कृष्ण भावनामृत के विरोधी होते हैं, किंतु प्रचारक का यह कर्तव्य है कि उन्हें कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विश्वास दिलाए और उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित करे। अनेक विरोधियों के बावजूद हम अपने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार जारी रख रहे हैं और संसार के अफ्रीका जैसे सुदूर भागों के लोगों को भी इस संकीर्तन विधि को ग्रहण कर रहे हैं। अपराधियों को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित करके चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सफलता का दृष्टांत प्रस्तुत किया है। हमें अति आदरपूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं कि हमें अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। हाँ, सबसे शक्तिशाली साधन प्रचारक का हरे कृष्ण कीर्तन है। प्रभुपाद जब प्रथम बार अमेरिका गए टॉपिंसन स्क्वेयर पार्क में क्या किया, भगवद गीता का प्रवचन दिया, क्या किया, करताल उठाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र है। तो ये विश्वास प्रभुपाद का था कि हरिनाम संकीर्तन सबसे प्रबल साधन है, सबसे प्रबल है। उस हरिनाम के प्रति हमें विश्वास होना चाहिए, पहली बात तो हमें उतना फेथ, हमें उतना श्रद्धा होनी चाहिए। यदि हमारी श्रद्धा नहीं तो हम नहीं बना सकते, नहीं प्रीचिंग कर सकते, क्योंकि ये की असर है। हरेर नाम केवलम कलैव नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलियुग का तो यही साधन है, इति षोडशक नाम कलिकल्मष नाशनम नात्त परतर उपाय सर्व वेदेश दुष्यते। सभी वेदों में एक ही घोषणा की गई है, इति षोडशक नाम हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा कलियुग में कोई साधन ही नहीं है, तो हरिनाम ही एकमात्र साधन। महाप्रभु ने क्या किया, रस्ते से जाते थे एक ही काम करते थे, कृष्णा 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 है, इसी हरिनाम का संकीर्तन है ना। महाप्रभु ने कोई बड़े बड़े प्रवचन नहीं दिए, भागवत कथा ही नहीं दी, कुछ नहीं प्रचार। तो तीसरा सबसे उत्तम कि प्रचारक को, हाँ, प्रचारक की रक्षा स्वयं कृष्ण करते हैं और वो सबसे प्रिय है। सबसे उत्तम बात है प्रचारक के लिए कि उसे डरने की कोई बात नहीं, कृष्ण का वचन है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो देखिए हमारे रक्षा का दायित्व तो स्वयं भगवान ले रहे, तो और क्या चाहिए। अब प्रचारक को ही ज्यादा कृपा मिलती है। महाप्रभु के इतने सारे स्टेटमेंट है कि चिंता मत करो कि मैं तुम्हें हमेशा रक्षा करूंगा। और देखो अब प्रचारक आंदोलन में देखिए, अभी फिलहाल एक पदयात्रा झारखंड में से जा रही थी, वहां पर डाकुओं का हमला हुआ, लेकिन 15 डाकू एक साथ वहां पर मारपीट करने के लिए, लेकिन भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। थोड़ा बहुत मारपीट लगा क्योंकि महाप्रभु स्वयं बोलते हरिदास ठाकुर ने स्वयं मार खाया प्रचार करने के लिए, तो भक्तों को पता है कि ये संभावना होगी, लेकिन उनकी जान को भी खतरा नहीं होता क्योंकि भगवान हमेशा, क्योंकि गौरनीता ही साथ में थे, तो उनका कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत लाठी पड़ी, जब उन्होंने जोर जोर से कीर्तन शुरू किया, गांव वाले जग गए रक्षा के लिए, तो कीर्तन ही किया उन्होंने, है ना, रक्षा के लिए तो कीर्तन ही हमें भगवान ही रक्षा किए उसी कारण। तो प्रचार कृष्ण द्वारा मान्य होता है। यदि कोई बद्ध जीव को कृष्ण भक्त होने का सुअवसर प्रदान करता है तो उसके सारे क्रियाकलाप अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान द्वारा समर्थित हो जाते हैं। पूर्ववर्ती आचार्यों के उदाहरण अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सभी सदस्यों को बद्ध जीवों का कल्याण करने के प्रयास में उन्हें कृष्ण भावनामृत बनाने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। सबसे परोपकार का कार्य है, सबसे इस संसार का श्रेष्ठ कार्य है दूसरों को कृष्ण भावना देना या कृष्ण का भक्त बनाना। इससे अलावा कोई उपकार का बड़ा कार्य नहीं है। बड़े बड़े अस्पताल खोलकर, अन्य क्षेत्रालय खोलकर, दान दक्षिणा देकर, कपड़े लत्ते देकर नहीं, ये शरीर की सेवा है, और शरीर नष्ट तो आपकी सेवा भी खत्म, लेकिन आत्मा को कृष्ण के चरणों में लाना ये सर्वोत्तम उपकार का कार्य है। इसलिए एक बार भवानंद प्रभु का जब दीक्षा हुआ तब सारे भक्त बोले, भवानंद आपका नाम ऐसा कैसे दिया, भव में आनंद का है, भव तो दुखालय है, तो दुख का सागर है, तो तुम फिर से जाके प्रभुपाद से पूछो कि तुम्हारे नाम का मीनिंग क्या है, भवानंद, भव में तो आनंद नहीं, तो प्रभुपाद ने, क्योंकि प्रभुपाद जो भी नाम देते उसका मीनिंग होता है, तो ये तो बड़ा कॉन्ट्राडक्शन लग रहा है कि भवानंद नाम दिया दुखालय सागर में। तो भवानंद प्रभु जाते हैं और प्रभुपाद से बोलते हैं, प्रभुपाद मेरे नाम का मीनिंग थोड़ा अटपटा नहीं लगता है कि भवानंद, भव में तो आनंद नहीं, आपने तो कहा गीता में कि दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुखालय तो इसमें आनंद कहाँ है? बोले हाँ है। बोले वो आनंद जो गोलोक वृंदावन में भी नहीं है। अरे गोलोक तो वृंदावन तो नित्य आनंद का स्थान है, तो वहां पर भी वो आनंद नहीं है? मतलब कौन सा आनंद है जैसा या जो गोलोक वृंदावन में नहीं है वो इस भौतिक संसार में? तो बोले प्रीचिंग का, जो प्रचार का आनंद है, क्योंकि गोलोक वृंदावन में प्रचार करना नहीं पड़ता है, और भौतिक जगत में जो प्रीचिंग का आनंद है वो गोलोक वृंदावन के आनंद से भी बढ़कर है ना। तो इसलिए यहां पर जो आनंद है प्रचार में आनंद है, वास्तव में आनंद है, क्योंकि आप किसी को गलत कार्यों से दुख के यहां से लौट कर भगवान के चरणों में लाते हो, वो जो सेटिस्फेक्शन है, वो जो हृदय में लगता है कि वाह इसका कुछ मैंने कुछ तो किया, वो जो भावना, वो फीलिंग्स, वो आनंद से भी बढ़कर है ना। आनंद हम स्वयं के आत्मा के द्वारा भोगते हैं, हम स्वयं के लिए भोगते हैं, लेकिन दूसरे के प्रति कुछ सद्भावना या उसके कल्याण करने के बाद जो भावना आती है वो हमारे आनंद से बढ़कर होती है, वो फीलिंग बढ़कर होती है। इसीलिए भावानंद पूर्वक कि तुम्हारा नाम गलत नहीं दिया, तुम इस आंदोलन प्रीचिंग करो, तुम्हें वो मौका ऊपर नहीं मिलेगा, इसलिए तुम यहां पर प्रचार करो, और प्रचार में जो आनंद है वो सबसे बड़ा आनंद है। ब्रह्म संप्रदाय का प्रचार भगवान को अत्यंत प्रिय है। जगत की सृष्टि न तो आंखें मूंद कर हुई न आकस्मिक हुए, इस तरह नित्यबद्ध जीवात्मा को भगवान द्वारा ब्रह्मा जी जैसे अपने प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में मुक्ति के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी को भगवान वैदिक का उपदेश, ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिसे इस ज्ञान का प्रसार बद्ध जीवों तक हो सके। बद्ध जीव भगवान के साथ अपने संबंध को भूलते रहते हैं, अतः भगवान के कार्यकलापों में आवश्यक है कि सृष्टि करे और वैदिक ज्ञान का प्रसार करे। तो अभी अभी ये पहला उपदेश नहीं है कि प्रभुपाद को उपदेश दिया, या ये तो सृष्टि से आरंभ से पहले से उपदेश दिया, ज्ञान का प्रचार करो, प्रीचिंग ही इसेंस, इसे प्रचार ही सार है, इस सृष्टि का सार ही प्रचार है। हा? तो प्रचार, नारद मुनि सबसे ग्रेट प्रचारक है, और प्रचार करते करते कई कठिनाई होती है, जैसे नारद मुनि को यहां पर बड़ा शाप मिला है ना, हर प्रचारक के साथ होता है। मैं दो दिन से उसी घटना को सामना कर रहा हूं, मैं भी किसी को ब्रह्मचारी बना दिया, उसके माता पिता बहन सब आकर मुझे, और कल तो किसी ने तो शाप दे दिया, शाप कि आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते, दूसरे के बच्चे छीन रहे हो। बोले बोले आपको कभी सुखी नहीं रहेंगे, मतलब चलेगा, इस संस्था में सुख तो है नहीं, मतलब अच्छा इस संस्था में नहीं सुखी, लेकिन भगवत धाम जाएंगे तब तो सुखी हो जाएंगे। लास्ट दिनों दो दिनों से भी मुझे भी शाप मिल रहे हैं उसी प्रचार के इसमें, लेकिन ब्रह्मचारी तो बन गया, वो हमारे लिए सफलता की बात है, बाकी शाप मिले, क्रोध मिले, मार मिले, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं कल यही सोच रहा था, ये श्लोक मेरे लिए भगवान ने शायद मुझे रियलाइज करने के लिए दिया कि ये श्लोक में भी शाप मिल रहा है और मुझे भी कल शाप मिला। तो बस यही पर समाप्त करता हूं कि नारद मुनि हमारे इस आंदोलन के हर हमें हर भक्तों को प्रचार के लिए प्रेरित होना चाहिए, और प्रचार ही हमारी परंपरा हमें सिखाती है, प्रचार करेंगे तो हम भी बचे रहेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। चैतन्य महाप्रभु सनातन रूप गोस्वामी बोलते हैं, आचार विचार प्रचार करे दुई कार्य, तुम्हें गुरु तुम्हें जगत ही रार्य। तो हमें विषय इंस्ट्रक्शन है महाप्रभु का, तो हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो प्रचार ही हमें करना चाहिए। वैसे मैं चार बार प्रचार करने के लिए नकार चुका हूं, लेकिन बार बार मुझे वही आदेश आता है, ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि जिसे को डायरेक्ट आदेश मिलता है वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। तीसरे कैंटो के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जब देवहूति को उपदेश देते तब उस तात्पर्य में लिखते हैं, जिसको किसी को गुरु का डायरेक्ट, ये गुरु के आदेश सबको नहीं मिलते हैं, बहुत सारे कम लोगों को मिलते हैं, ज्यादा डायरेक्ट फ्रंट आदेश तो मिलता है तो व्यक्ति प्रचार कर सकता है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही या परंपरा के आशीर्वाद से ही कोई प्रीचिंग कर सकता है। तो हमारी परंपरा तो हमें पहले ही आदेश दे चुकी है प्रचार, इसे प्रयास करिए, हम भी प्रयास करें, प्रचार करें और अपना जीवन सफल करें। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न या टिप्पणी हो तो पूछिए। हाँ, अब प्रचार केवल प्रीचिंग या लेक्चर देना नहीं होता, तो प्रचार मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बेस्ट साधन है। प्रभुपाद ने कहा है कि प्रचार पुस्तकों का वितरण ही सबसे बड़ा प्रचार है।
हरे कृष्णा। और बहुत सुंदर प्रभु जी आपने प्रवचन दिया और इसमें बताया प्रचार की बहुत महत्वता है, बहुत बार से सुन रहे थे, लेकिन ऐसा जो प्रचार के लिए महत्वता, नारद मुनि का जो भाव है जो आपने बताया, प्रभुपाद जी के प्रवचन में प्रभुपाद जी बताते कि भक्त लोग प्रचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि जब धर्म का विनाश होता है और अधर्म बढ़ता है तब मैं यहां आता हूं। लेकिन भगवान के भक्त इतने करुणालय होते हैं कि भगवान को कहते हैं भगवान आप गोलोक वृंदावन में राधा रानी के साथ आनंद करिए, हम लोग यहां अधर्म को बचाने के लिए यहां प्रचार करेंगे और आप आनंद में रहिए, हम यहां इस तो ये भाव से प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हमें प्रचार में लगना चाहिए। प्रभुपाद जी के हर अंत के प्रवचन में यही होता था कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और आप लोग सब प्रचार में लगिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे वो बहुत उत्साह आया, बहुत दिनों के बाद ऐसा प्रवचन सुना। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रवचन दिया आपने। प्रभु जी मेरा ये जिज्ञासा है कि कहते हैं श्रवणम नैव कर्तव्यम, ऐसा है ना वो
सर्पोच्चिष्ट
पयजथा अवैष्णव मुखद गिरण। तो जो वैष्णव तो बहुत ऊंची चीज होता है ना, हम लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम जिनके मुख से हम कीर्तन सुन रहे हैं, जैसे उसमें एग्जाम्पल दिया गया है वो जैसे सर्प दूध अमृत तुल्य होता है, उसमें अगर सर्प जीव लगा देता है तो जो पिएगा वो मर जाएगा, आदमी मृत्यु होगा उसका। तो उस प्रकार से हम जो मुख से सुनते हैं जिनके, तो अगर वो वैष्णव नहीं है तो हमारे क्या जन्म मृत्यु चक्र लगातार रहेगा क्या, क्या कैसे?
दो बातें हैं, एक तो पहले चार संप्रदाय में यदि कोई व्यक्ति है चार संप्रदाय के अलावा कोई सुनता है तो अवैष्णव मुखद गिरण होता है। दूसरी बात जो आपका भाव है कि इस संप्रदाय में भी जो व्यक्ति ज्वाइंट होते हैं वो तो वैष्णव नहीं बने अभी तक शुद्ध, तो उनके मुखों से भी सुनेंगे तो उसका नहीं बोलते कि ये एक संप्रदाय एक परंपरा से आता है, इस परंपरा से जो कनेक्ट हो जाता है। प्रभुपाद बोलते हैं भले ही हम पूर्ण ना हो लेकिन हमारे पास जो परंपरा या हमारे पास जो संदेश है वो पूर्ण है। तद्वा विसर्गो जनता का विप्लव, इस श्लोक पहले ही तात्पर्य में आमुख में ये श्लोक प्रभुपाद ने लिखा है, भले ही हम क्यों ना अपूर्ण हो लेकिन हमारे पास जो संदेश है क्योंकि हम उस पूर्ण परंपरा से कनेक्ट हुए हैं। जिस प्रकार एक लोहा अग्नि नहीं होती है लेकिन जब अग्नि के संपर्क में आता है लोहा भी अग्नि बन जाता है, उसी प्रकार यदि हम अशुद्ध क्यों ना हो लेकिन हमारे पास जो संदेश है हमारे पास जो कीर्तन है वो हमें आज्ञा से मिला है, हम स्वयं से नहीं। अब कृष्ण भावना से आने से पहले थोड़ी कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण मंत्र जब करते थे नहीं करते थे, हम नहीं करते थे, हम कीर्तन भी नहीं मालूम था, हरे कृष्ण मंत्र भी नहीं मालूम था, लेकिन हम कब पता चला और हम कब कीर्तन करने लगे, जब हम उस प्रामाणिक परंपरा से जुड़े तब हमारे पास उनका संदेश आया। यदि हमारे पास अपूर्णता क्यों ना हो, हम वैष्णव ना बने भी हो लेकिन हम उनसे कनेक्टेड है, उनकी आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा जो भी संदेश दिया जाएगा वो पूर्ण ही होगा, है ना। तो इसीलिए अवैष्णव मुखद गिरण, यदि हमारे संस्था के अंदर भी कोई वैष्णव ना हो, अरे बन नहीं रहा लेकिन वो वैष्णवता के स्तर पर या मार्ग पर तो निकल चढ़ा है, निकल चुका है, इसलिए वो कीर्तन करता है वो भी उसे भक्त बनाएगा। ओके, माइक 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 मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बोलिए बोलिए।
हरे कृष्ण, बाहर लोग दारू पीते हैं, मछली मटन ये सब खाते, खराब कर्म करते, तुम्हारा बात क्या सुनेगा कि प्रचार करने बाद तुम उल्टा प्रचार हमारा ऊपर करते और हरे कृष्ण महामात्र नहीं सुनते, ये कैसा प्रचार करेगा?
हरिदास ठाकुर और जो नित्यानंद वो जा रहे थे, उन्होंने हरे कृष्ण कीर्तन किया, केवल जरूरी नहीं कि बोलना चाहिए, उन्होंने वो नहीं बोले तो पहली बात तो मुझुआ से जो पाप करता है उसका नाम तो नहीं निकलता है, जैसे रत्नाकर डाकू नारद मुनि ने बोला बोलो राम, क्योंकि इतना पापी था कि राम नहीं निकल रहा था, तो जरूरी नहीं हमको मुंह से उनको निकालना है, उनके कानों में तो सुना सकते हैं, तो इसीलिए तो जोर जोर से कीर्तन क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि उसके कानों में प्रवेश करेंगे कर्णेन्द्रिय रंध्र, जिस रंध्र से प्रवेश होगा तो प्रक्रिया तो शुरू हो गई सुकृति की, अपने आप धीरे धीरे वो मटर जाके भक्त बनेगा, एक साल दो साल तीन साल बाद तो सुनते जाएंगे, हमको हरिनाम करते जाएंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य तो नहीं छोड़ना है, हमें सड़कों पे जाने कीर्तन करना है, विशेषण करना है, वो हमारे कर्तव्य नहीं छोड़ने, भले वो भक्त ना बने, दो चार चपरा खानी पड़े, हरदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को खानी पड़ी कि नहीं, कुछ ने मारा, शराबी नहीं मारा ना, जगाई मदाई नहीं मारा, तो नित्यानंद प्रभु ने छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा, तो भले वो हमको उल्टा सुलटा बोले लेकिन हमारा काम, पर साधु मतलब क्या, साधु मतलब तितिक्षवा कारुणिका सर्वदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा शांता साधव साधुभूषण, तो तितिक्षा सहन करना है हमको, यानी कि वो गाली देंगे करे तो हमने कीर्तन मन करना है। और जब वो शराबी अपना कुकर्म नहीं छोड़ सकता है तो साधु अपना सुकर्म क्यों छोड़े, नहीं छोड़ना है तो हमें करना है। आज नहीं तो कल वो सोचेगा इसको मैंने गाली दिया मारा तभी भी मेरे पास आता है, फिर जाओ फिर मारे फिर जाओ, तो यही कंपैशन है। कंपैशन का मतलब क्या है? हरदास ठाकुर प्रभुपाद कितने सारे आचरण तकलीफ सा, तो प्रचार का अर्थ ही है कि सहो सहनशीलता, दैट इज अ साधु, दैट इज अ प्रचारक। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।